लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेविका सिस्टर मैरी बेरनादित किस्पोट्टा की जीवनी पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं।
शरण प्रभु गुरु येसु।
श्रोताओं, हमने विगत दिनों भारत के संतों और धन्यों के जीवन पर गौर किया है और उनसे प्रेरणाएं ली हैं। आज हम ऐसे व्यक्ति की याद करेंगे जिसने प्रभु का अनुसरण करने के लिए अदम्य साहस का परिचय दिया है। ईश सेवी का सिस्टर मैरी बेरनादित किस्पोट्टा छोटा नागपुर की कैथोलिक कलीसिया के लिए एक महान वरदान है। अपनों की सेवा करने की प्रेरणा ने उन्हें समाज के रीति रिवाज से अलग एक नया जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी। उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण और उनका त्यागमय जीवन हमारे लिए सचमुच प्रेरणादायक है। ईश सेवी का सिस्टर मैरी बेरनादित किस्पोट्टा का जन्म 2 जून 1878 को रांची से 32 किलोमीटर दूर सरगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पूरन प्रसाद किस्पोट्टा और माता का नाम पॉलिना किस्पोट्टा था। बेरनादित का बचपन का नाम ख्रिस्त आनंदित रूप था। उनका जन्म एक लुथेरन परिवार में हुआ था, किंतु 1885 में फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स के रांची आगमन के बाद उन्होंने कैथोलिक कलीसिया में प्रवेश किया। जेसुइट मिशनरियों के साथ साथ लोरेटो की धम बहनें भी छोटा नागपुर के मिशन में सहयोग देने के लिए रांची लाई गई थीं। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, जिसमें पढ़ाई करते हुए बेरनादित बौद्धिक और मानसिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी करने लगी। वह लोरेटो धम बहनों के समर्पित जीवन से बहुत प्रभावित हुए और उसके मन में उनके समान निस्वार्थ सेवा करने का भाव जागने लगा। वह अपने मन में यह विचार करने लगी, अगर ये मादर लोग यीशु के प्रेम से अपने प्यारे माँ बाप, भाई बहन, मित्र, कुटुम्बों और अपने निज देश ही तक भी त्याग देकर हमारे इस दूर जंगली देश में आकर हम अनजान, गरीब और नीच जातियों को इतना प्रेम दुलार करके हमारी आत्माओं को स्वर्ग पहुंचाने के फिक्र से दिन रात इतनी मेहनत किया करती हैं, तो क्या हम लोग भी इनके सुंदर नमूनों के अनुसार अपने देश और जातियों की भलाई के लिए नहीं करेंगी? इसी भावना से प्रेरित होकर वह धर्म बहनों के साथ गांव जाकर गरीब लोगों की मदद, रोगियों की सेवा, महामारी के शिकार लोगों की सहायता, मरे हुए लोगों की निगरानी और अनाथ बच्चों की देखभाल में हाथ बटाने लगी। धर्म बहनों के समान वह भी कुंवारी रहकर अपने भाई बहनों की सेवा एवं आत्माओं की मुक्ति में सहयोग देना चाहती थी, किंतु यह समाज की परंपरा के खिलाफ था। उस समय की आदिवासी परंपरा के अनुसार कोई भी लड़की बिना शादी नहीं रह सकती थी। अब बेरनादित भी शादी के लायक हो चुकी थी, अतः घर वाले उसकी शादी की बात करने लगे, पर बेरनादित ने शादी से पूरी तरह इनकार कर दिया। शादी करने से उसके इस इनकार ने कई लोगों के मन में उलझन और भय उत्पन्न किया। महाधर्मदश पुरोहित और धर्म बहनों ने उसके इस विचार को मिशन में बाधा कहा और उसे स्कूल से घर भेज दिया गया। घर पहुंचते ही उस पर शादी का दबाव डाला जाने लगा। शादी के लिए मन बनाने हेतु गहने बनवाए गए, किंतु बेरनादित ने सब कुछ को इनकार कर दिया। उसका मानना था कि गहनों के द्वारा उसका मन दुनिया की ओर झुककर अंत में बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने उससे समझाने की कोशिश की, गाली दी, थप्पड़ मारी, किंतु इसके बावजूद वह शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। तब उसके पिताजी ने अत्यधिक गुस्से में उसे तलवार से मार डालना चाहा, पर वह किसी तरह बच निकली। वह घर से भागकर कॉन्वेंट चली गई। वहां पहुंचकर वह सीधे पौत्र सैक्रमेंट के सामने गई और रोते हुए प्रभु को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें इस संकट से बचा लिया था। बेरनादेत की तेज इच्छा थी कि यदि वह धर्म बहन ना भी बन पाए तो कम से कम कुंवारी रहकर अपने लोगों की सेवा करेगी। कॉन्वेंट में धर्म बहनों ने बेरनादेत को रख तो लिया, लेकिन उससे बड़ी कठिनाई होने लगी क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। घर का जो भी सामान था उससे घर वालों ने गुस्से में मांग लिया था। फिर भी वह निराश नहीं हुई और अपने निश्चय में दृढ़ बनी रही। उस समय के महाधर्माध्यक्ष पॉल गोथल्स ने बेरनादेत की धर्म बहन बनने की तेज इच्छा को जानकर कहा कि उसे 8 वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा और यदि इस लंबी अवधि में वह दृढ़ और स्थिर बनी रहेगी तो आगे विचार किया जाएगा। साथ ही उसे निष्कलंक कुंवारी मरियम के संगत में भर्ती किया गया। 8 साल की इस लंबी अवधि को बेरनादेत नई उमंग और नई जोश के साथ बिताने लगी क्योंकि वह प्रभु की दुल्हन बनने के लिए हर प्रकार की कठिनाई सहने के लिए तैयार थी। उसे कॉन्वेंट में विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां दी गईं। उन सभी छोटी बड़ी जिम्मेदारियों को वह प्रेम और तत्परता से पूरा करती थी। देखते ही देखते वह समय बीत गया और वह पावन दिन भी आ गया जब उसने अपने आप को एक धर्म बहन के रूप में पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दिया। 26 जुलाई 1897 को उन्होंने पहला मन्नत लिया और इसी के साथ उन्होंने संतन्ना के पुत्रों के धर्म समाज की भी स्थापना की। आज यह धर्म समाज बहुत विस्तृत हो चुका है एवं बहुत सारे लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। हम ईश सेविका माता मेरी बेरनादेत किस्पोट्टा का शत शत नमन करते हैं। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेविका माता मेरी बेरनादेत किस्पोट्टा की जीवनी पर एक लघु चर्चा सुन रहे थे।
शरण प्रभु गुरु येसु मम, शरण प्रभु गुरु येसु,
शरण प्रभु
शरण प्रभु गुरु येसु मम, शरण प्रभु गुरु येसु,
शरण प्रभु गुरु येसु मम, शरण प्रभु
शरण जगत गुरु येसु मम, शरण जगत गुरु येसु,
शरण जगत गुरु येसु मम, शरण जगत गुरु येसु,
शरण जगत गुरु येसु मम, शरण जगत गुरु येसु,
शरण जगत गुरु येसु मम, शरण जगत
शरण सर्वज्ञ गुरु येसु मम, शरण सर्वज्ञ।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक कर्ज की नाव। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, तेजी से बदलती दुनिया, महंगाई और आधुनिक जीवन शैली में पैसे की किल्लत सीमित आमदनी वाले प्रायः हर इंसान को होती है। कई बार परिस्थिति के आगे मजबूर होकर व्यक्ति को कर्जे लेने की नौबत आ जाती है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग अपनी पुरानी शानो शौकत का प्रदर्शन करने, या कहें समाज में रूढ़िवादी परंपरा को बनाए रखने के लिए ब्याज में कर्ज लेते हैं। सामर्थ्य से अधिक खर्च करने के बाद समाज में अपनी झूठी शानो शौकत का प्रदर्शन कर दूसरों से वाहवाही तो मिल जाती है, पर सिर से पांव तक कर्ज से डूबे इंसान के रातों की नींद और मन का चैन छिन जाता है। आज भी अनेक मुसीबतों से घिरे ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो अपने जीवन को संघर्ष मानकर यह लड़ाई जीतने के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, संतोष की सांस लेते हुए जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं। संतोष में ही सुख है, पर कुछ लोगों का कहना है कि संतोष कर लेने से प्रगति रुक जाती है और उन्नति का प्रयत्न कमजोर हो जाता है। यह बात अस्थिर मन वालों के ऊपर ही लागू होती है। विवेकशील व्यक्ति अच्छी तरह से जानते हैं कि असंतुलित खिन और उद्विग्न मन से कुछ कर सकना तो दूर, कुछ सोच सकना भी कठिन है। इसलिए हमें आज जो हमारे पास है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। कर्ज लेने की नौबत आ भी जाए तो 3 बार जरूर सोच लें। आशा है आज का नाटक इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए प्रस्तुत है माइकल होजेस का लिखा नाटक कर्ज की नाव।
तो अपनी छोटी सी गृहस्थी आखिर बस ही गई क्यों?
हाँ जया, बस तो गई है।
हमारा तो लव मैरिज करना ही जैसे गुनाह हो गया है।
अगर घर वालों को लड़का या लड़की पसंद नहीं है तो उनके लिए लड़की लड़के का प्रेम विवाह कर लेना गुनाह ही होता है।
लेकिन मुझे पूरी आशा है कि मेरे मम्मी पापा कुछ दिनों में मान जाएंगे।
मुझे भी विश्वास है कि साल भर में हम दोनों के मम्मी पापा मान जाएंगे।
लेकिन अभी मान जाते तो उनका क्या जाता? कम से कम हमारी गृहस्थी बसाने में हमारी मदद तो हो जाती।
तुमने ठीक कहा जया, हमें अपनी गृहस्थी बसाने में सचमुच उनसे बहुत मदद मिलती।
उनके मुंह फूले हुए हैं, इसीलिए तो गृहस्थी का सारा सामान उधारी में खरीदना पड़ा या फिर किश्तों में।
हाँ, और उधारी और किश्त ने टेंशन भी बढ़ा दी है।
तुम बेकार का टेंशन क्यों लेते हो शरद? अरे सामान तो अपने घर आ गया ना, तो बस खाते पीते देते रहेंगे और क्या।
इस टेंशन को तुम नहीं समझ पाओगी जया।
क्यों, मैं क्यों नहीं समझ पाऊंगी?
क्योंकि तनख्वाह मिलने से पहले ही, हाथ में आने से पहले ही मुझे यह एहसास हो जाता है कि अब मेरे हाथ में क्या बचने वाला है।
मगर 3 महीने में तो एक को छोड़कर सारी उधारी और किश्तें चुका जाएंगी।
हाँ यह तो है, तब फिर से पैसा हाथ में रहा करेगा।
लेकिन अभी तो एक और जरूरी चीज हमें खरीदना है।
अब कोई कितनी भी जरूरी चीज क्यों ना हो, मैं अब कुछ खरीदने वाला नहीं हूँ।
क्यों, किश्तें बचाना चाहते हो?
किश्तें कह लो या पैसे कह लो, तुम यही बचाना चाहता हूँ जया। और वैसे भी हमारा काम तो चल ही रहा है।
काम तो चल रहा है, लेकिन उसकी कमी तो हर वक्त महसूस होती है ना।
किसकी, कौन सी चीज की बात कर रही है तुम?
क्यों भूल गए तुम, तुम्हारी मोटरसाइकिल।
अच्छा मोटरसाइकिल की बात कर रही है तुम, लेकिन हमें तो पापा के उस घर में उसको छोड़कर आना पड़ा, पड़ी रहने दो।
लेकिन ऑफिस जाने और हर काम के लिए तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है।
अरे इसमें परेशानी कैसी जया, पैदल चलने से स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता।
क्यों, अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हो तुम।
अरे मैं तो सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच।
तुम्हारे ऑफिस से कोई लोन वगैरह मिल सकता है क्या?
ऑफिस से लोन का तो पूछो मत, साल भर पहले ही तो पिंकी की शादी के लिए मैंने कुछ लोन लिया था।
अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, मतलब कहीं से भी लोन लेने का कोई चांस ही नहीं है।
हाँ कोई चारा नहीं है।
तो ऐसा करती हूँ कि मैं भी कहीं कोई जॉब ढूंढ लेती हूँ।
इस प्रेगनेंसी में तुम्हें कौन काम देगा?
हाँ यह तो है, तो फिर एक ही रास्ता बचता है, कहीं से ब्याज पर रुपए उठाने का।
तुम जानती हो जा तुम मुझसे क्या कह रही हो?
हाँ ब्याज पर रुपए उठाने की कह रही हूँ।
नहीं, तुम ब्याज पर रुपए उधार लेने की बात कर रही हो, ब्याज चुकाकर कर्ज लेने की बात कर रही हो तुम।
तो इसमें क्या है, कई लोग ब्याज पर कर्ज लेते हैं।
तुमने कभी ऐसा कर्ज लिया है?
नहीं।
तभी तो तुम्हें कुछ मालूम नहीं, अगर मालूम होता ना तो तुम अपने दिमाग में ये बातें नहीं लाती।
मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि तुम्हें नई मोटरसाइकिल पर सवार देखूं। अगर पूरी कर सको तो कर लो, घर वालों की नाराजगी दूर होते ही वे भी हमारी मदद कर देंगे।
ठीक है, मगर एक बार और सोच लो, कर्ज की नाव में एक बार जो बैठा तो फिर वह उतर ही नहीं पाता है।
मैंने जो कह दिया सो कह दिया। देखो, तुमने मेरी सलाह मानकर तुम कितने आराम से हो। आराम का आराम और शान अलग से।
फिर भी जया, पता नहीं क्यों कर्ज लेकर मुझे लगता है कि मैंने गलत ही किया है। अगर किसी को पता चलेगा कि हमने कर्ज लेकर मोटरसाइकिल ली है तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा?
सोचेगा तो कोई तभी ना जब उसे इस बारे में पता चलेगा। जब उसे पता ही नहीं चलेगा तो वह बेचारा सोचेगा क्यों? और जब हम किसी को कुछ बताएंगे ही नहीं तो किसी को क्या पता चलेगा?
बात तो तुम्हारी ठीक ही है, फिर भी अभी पिछले ही महीने देख लो, तुम्हारा चेकअप, डॉक्टर की फीस, दवा, गोली, खान पान, इसमें कितना पैसा लग गया है, हा? हमने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था।
अब जैसे पिछले महीने सब कुछ चल गया था, ऐसे ही आगे भी चला लेंगे।
सब कुछ कहाँ चल पाया जया?
क्यों?
इतने खर्चों के कारण मैं कर्ज का ब्याज नहीं दे पाया। कहीं ऐसा ना हो कि ब्याज के चक्कर में पार्वती भाई यहाँ भी चली आए।
शरद भैया, ओ शरद भैया।
जिसका डर था वही हुआ, ये पार्वती यहाँ तक आ पहुँची, अब क्या करें?
बात तो करना ही पड़ेगी ना, मैं उसे अंदर बुलाती हूँ। कौन?
हम हैं पार्वती।
अच्छा अच्छा, आप हैं, आइए।
अरे पार्वती भाभी, आपने तकलीफ क्यों की? मैं तो कल वल आपके पास आना ही वाला था।
रेन दो भैया, हमको क्या सिखाते हो, हम तो इस धंधे में सालों से हैं और अच्छे से लोगन को पहचानते हैं।
अच्छा, इन्हीं से पैसे लाए थे तुम?
पैसे वैसे नहीं भाई, रुपए रुपए बोलो।
पार्वती भाभी, मैं इस महीने भी आपका ब्याज नहीं दे पाऊंगा। पिछले महीने और इस महीने का मिलाकर मैं अगले महीने आपको देता हूँ।
शरद भैया, ये सब पार्वती को नहीं बताओ, हमने सब देखा है। तुम तो अभी की अभी मेरा ब्याज ढीला करो भैया। पार्वती धंधा करती है ब्याज का, खैरात नहीं बांटती है।
मैंने कहा तो है अगले महीने का।
ए भैया, जरा होश में रहो तुम, मैं तो ब्याज लेकर ही जाऊंगी यहाँ से। नहीं तो आज मोहल्ले में तुम्हारी इज्जत नहीं उतारी तो मेरा नाम पार्वती भाभी नहीं है। हाँ
शरद, शरद,
ये लो, इसको भी अभी आना था। आओ जितेश, आओ।
नमस्ते भाभी।
नमस्ते भैया।
अरे पार्वती भाभी, आप यहाँ कैसे? अच्छा, शरद इनसे परिचय होगा?
जितेश भैया कोई परिचय अरिचय नहीं है, अपना परिचय तो बस रुपए से है। ये शरद भैया ने अपने से 50,000 रुपया ब्याज पे लिए हैं, 18% से, बस वही ब्याज लेने आई हैं हम।
अच्छा पार्वती भाभी, आप ऐसा करो, घर जाओ, शाम को मैं और शरद आकर अपना आपका पूरा हिसाब कर देंगे।
ठीक है, तुम बोल रहे हो तो जाती हूँ।
गई यार। शरद, तू कहाँ इस कर्ज और ब्याज के चक्कर में कहाँ से फंस गया है यार? तुझे पता नहीं कि कर्ज की नाव में बैठने वाला हमेशा डूबता ही है?
कुछ मजबूरियां आ गई थी यार, सो लेना पड़ा।
तो पार्वती के पास चला गया, हम जैसे दोस्तों की याद नहीं आई।
हम अपनी समस्या बताकर अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे।
ठीक है, तो शरद मैं शाम को 50,000 रुपए और 2-3 महीने का ब्याज लेकर आता हूँ और अपन चलकर पार्वती को उसकी रकम लौटा देते हैं। तू धीरे धीरे करके मेरे पैसे लौटाते रहना, ठीक है? ठीक है ना भाभी?
ठीक है भैया, थैंक यू भैया जो आपने आकर हमारी मदद की।
आप मेरी बहन की तरह है भाभी, लेकिन याद रखिए कि जीवन में भूल कर भी किसी से कभी कर्ज मत लीजिए। कर्ज की नाव हमेशा ही डूबती है, इसलिए उसमें बैठने वाला भी डूब जाता है।
थैंक यू जितेश, तूने आज हमें डूबने से बचा लिया।
दोस्त हमेशा दोस्त की मदद के लिए ही होते हैं।
मैंने कान पकड़ा यार, जो अब कभी मैं ब्याज से कर्ज लूं।
कर्ज की नाव। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटक सुना। इस नाटक के कलाकार थे डॉक्टर भावना प्रधान, दिव्या शूलिया, निर्विकार मूल्य और माइकल होजेस। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।